शुरू करेंगे आयत 71 से। अब यहाँ से एक दूसरा गिरोह है। पहले हमने मुनाफिकीन की सिफात, अलामतें, उनका इंजाम देखा, तो यहाँ से हम चलेंगे 71 के अगली आयात तक, जहाँ पे हमें मोमिनों का तذکرہ मिलेगा। आयत 71, वल मोमिनून वल मोमिनात उबादुहुम अवलिया उबाद। और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें कौन होते हैं? सोचिए, खुद से पूछें, क्या मैं इस गिरोह में आती हूँ? और अगर इस गिरोह में आती हैं तो फिर ये सिफात आपको अपने अंदर इंशाल्लाह दिखनी चाहिए। क्या है इनकी सिफात? बादहुम औलिया उबाद, बास बास के साथी हैं, यानी आपस में एक मोहब्बत होती है। ईमान की बुनियाद पे एक भाईचारगी होती है, कैफियत होती है। पूछिए, क्या मुझे अपने दूसरे ईमान वालों के साथ मोहब्बत महसूस होती है? दूसरी खूबी, यामुरून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते हैं। पढ़ने में भी सोचना नहीं पड़ा मुझे, जब पीछे पढ़ रही थी तो सोच के पढ़ रही थी, गलत ना बोल दूँ, क्योंकि तबीयत को ये बात नहीं समझ आती कि यामुरून बिल मुनकर। तो यहाँ क्या है? यामुरून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते हैं। तीसरी खूबी, वयनहौन अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हैं। चौथी खूबी, वयुकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। पांचवी, वयूतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। और छठी खूबी, वयुतीउन अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करते हैं, यानी बात मानते हैं, सबमिट होते हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए। सोचिए ज़रा, पिछली लिस्ट में ये नाम, ये खूबी है मेरे अंदर? सबसे अहम, जिसको आज हमने नमाज रोज़े के बाद अक्सर भुला दिया होता है। ये सारे काम करो, कितने काम हुए टोटल? पांच। आप अल्लाह क्या देगा? ओलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहमत फरमाएगा। पहला अल्लाह का वादा रहमत का, क्यों करेगा? इसलिए कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दूसरी बात, वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात, वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से। किस चीज़ का? जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन जन्नतों का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कब तक? खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। सोचिए ज़रा, लफ्ज़ हमेशा पे गौर करें। दुनिया के घर बन भी जाएं तो फिर बिगड़ने का खतरा होता है, छिन जाते हैं। और क्या मिलेगा? व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। और क्या होगा? बहुत उम्दा मकानात का वादा, हमेशा रहने वाले बागात में। घर इंसान का वीक पॉइंट होता है, वहाँ वादे मिल गए। और ये सब भी छोटा है उस नेमत के मुकाबले में जिसका जिक्र आगे आ रहा है। व रिदवान मिनल्लाही अकबर, और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी। यानी ये सब कुछ तो छोटे छोटे वादे हैं, असल बड़ा वादा क्या है? कि अल्लाह की रजा मिलेगी, और ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी जन्नत की सारी नेमतें अपनी जगह, मगर अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा। सोचिए ज़रा, है ना तस्वीर का दूसरा रुख, किरदार ही बदल गया। एक तरफ वो लोग थे जो अपने आप को मोमिन कहकर, मुसलमान कहकर, कलमा गो कहकर बात नहीं मानते थे। अब दूसरी तरफ, यहाँ से थोड़ी सी हम बहस करेंगे इस पे कि कुरान का असलूब क्या है। देखिए, मुतजाद किरदारों को आमने सामने ले आता है। बचपन में कभी आपने उर्दू के पीरियड में कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ों को देखा था? मुजक्कर मुअन्नस, औरत मर्द, कुर्सी मेज़, करते थे ना? तकाबुल के साथ चीज़ वाजे हो जाती है। इस तरह मुतजाद खूबियाँ, मुतजाद चीज़ों को आगे पीछे करके ले आता है अल्लाह ताला। क्यों? ताकि पहचान और शनाख्त में आसानी हो। उजाला उस वक़्त तक मुकम्मल तौर पर जहनी उफक पर रोशन नहीं होता जब तक अंधेरे का वजूद सामने नहीं आता। यानी जिसने अंधेरा नहीं देखा उसको रोशनी की क्या कदर? राहत की कदर उस वक्त आती है जब तकलीफ़ दामनगीर होती है। अरबी ज़बान की एक कहावत है कि तारिफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, चीज़ों को उनकी ज़िद से पहचानो, ज़िद ऑपोज़िट से। कुरान पाक ने हक और बातिल, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसी तरह जुल्म और रहम और फिर इनसे बनने वाले किरदारों को साथ साथ बयान किया। क्यों? ताकि मतलूबा तारुफ में कोई छुपी हुई चीज़ न रह जाए। पहले मुनाफिकीन का तذکرہ, ताकि पीछे से जो सिलसिला चल रहा था वो मरबूत रहे। ये भी एक सवाल आप लिख सकते हैं कि मोमिनों का तذکرہ पहले और मुनाफिकों का बाद में क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब, पीछे से तذکرہ मुनाफिकों का चल रहा था। और वैसे भी जब इंसान निफाक वाली सिफात पढ़ के उसके बुरे अंजाम को देख के डर जाता है ना, तो समझ नहीं आता करूं क्या। तो आज आगे लिस्ट रख दी कि फिर तुम मुनाफ़त की सीढ़ी से उतर कर ईमान की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाओ। तो दो नुमायाँ बातें आपको इसमें महसूस होंगी। क्या वो क्या है कि निफाक, कुफर या ईमान महज एक टाइटल का नाम नहीं है, और ना महज शनाख्त नहीं है, शनाख्त का ज़रिया है। असल में जो आदात है इंसान की, जो खूबियाँ हैं, और जो इंसान का माइंड सेट है जिसको जाविया निगाह कहते हैं, इन सब के मजमूए का नाम किरदार है। मुनाफिक एक ख़ास तरह के किरदार का नाम है, और मोमिन भी अपना एक ख़ास उसलूब रखता है। उनकी अपनी आदतें, इनकी अपनी आदतें, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मेल नहीं खाते। लिहाजा हर बंदा अपने आप को अपनी खूबियों के आईने में पहचाने। क़तः नज़र इसके कि आपका अपना नाम क्या है, मोहम्मद इब्राहिम, दो नबियों का नाम, फातिमा, आयशा, रुकैया, नबी की बीवियों बेटियों के नामों पे नाम, और पैदा भी आप हुए मुसलमान घर में, पैदाइशी मुस्लिम। लेकिन आपकी अपनी सोच और आपका अपना अमल आपको मोमिन, काफिर और मुनाफिक में से कुछ बनाएगा। ये कोई नाम नहीं है कि माँ के पेट से पैदा होने की वजह से आपको दे दिया गया। तो अपने आप को अब हमने चेक करना है कि क़यामत के दिन हम किस लिस्ट में खड़े होंगे, हमारे नाम किस लिस्ट के अंदर मिलेंगे। दूसरी बात भी हमें एक पता चली, और वो क्या कि मुनाफिक मर्द हों या औरतें, सब की सोच मिलती है, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, एक ही चट्टे के बट्टे, अपने अमाल से पहचाने जाते हैं। सोच भी इनकी एक है। इनको मज़ा ही एक ख़ास माहौल में आता है, जब तक मिक्स गैदरिंग ना, इनको लगता है शादी फीकी है। जब तक गुनाह के लिए तबीयत पर कोई नशा ना छा जाए, कहते हैं कि इंजॉय नहीं कर पा रहे, बोरिंग है, कुछ कुछ मिसिंग है। म्यूज़िक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, पाँव नहीं थर्राते, खुशी का एहसास ही नहीं होता। लेकिन सोच एक होने के बावजूद, हम रंग होने के बावजूद, असलन वो सारे अपने मुफाद के बंदे हैं। नस्ल या रंग की यकसानी इनको एक दूसरे के करीब करती है, करीब रखती है, लेकिन फिर जहाँ इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, अपने साथियों को भी धोखा दे के चले जाते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि तकाबुल है यहाँ मोमिन और मुनाफिक का। वहाँ उनकी सिफात देखी थी, आइए ज़रा यहाँ भी इनकी सिफात देखते हैं। तो पीछे क्या आता है, मुनाफिक मुनकर का हुक्म देते हैं, इसके बरक्स मारूफ से रोकते हैं, जबकि मोमिन मुख्तलिफ किरदार, ऑपोजिट पर्सनैलिटी, मारूफ का हुक्म, मुनकर से रोकना। क्योंकि मोमिनों का जो गिरोह है ना, ये ज़मीन के फसाद को ख़त्म करने और इंसानों की इसलाह के लिए उठा होता है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, कुन तुम खैर उम्मत उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। काम बहुत बड़ा अल्लाह ने दिया है मोमिनों को, और ये काम सिर्फ उसी सूरत में होगा जब नेकी और मारूफ के अलमबरदार बने, अपने इस 5 फुट के पैकर में मारूफ को लेकर आए, इसकी नशरो इशात में कोशिश करें, इसको फ़रोग दें, इसकी पब्लिसिटी करें, इसके नफाज की कोशिशें करें। पहनना ओढ़ना भी मारूफ का इश्तहार हो, खाना पीना भी बुराई के इश्तहार ना बने, हम ऐसे मॉडल्स ना बन जाए दुनिया में कि लोग हमें बुराई की मिसाल बना दें। अगर ये हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहली खूबी आप में मिल गई, आपका किबला दुरुस्त है। ज़िंदगी में आपकी कोशिशों का रुख यह है कि आपके ज़रिए से खुशबू फैल रही है। आप देखिए, दो मक्खियाँ हैं कुरान में जिनका तذکرہ, मैंने अभी रमज़ान में दोनों के तकाबुल पे एक लेक्चर भी दिया था, शहद की मक्खी बमुकाबला आम मक्खी। इधर भी उसी को समझे, मुनाफिक आम मक्खी गंद पे बैठता है, गंदगी छोड़ के जाता है, शहद की मक्खी फूलों पे बैठती है और फूलों का रस तोड़ती है। और एक बड़ी खूबसूरत एक स्लाइड आई थी, तो उस पर एक स्टूडेंट ने जो मैसेज भेजा, मैं उस पर रो पड़ी वल्लाही, कि लोग क्या सोचते हैं कि शहद की मक्खी जिधर से गुजरती है वहां से खुशबू लेती है और असर छोड़ जाती है, और आखिर में फिर वहां शहद छोड़ती है। तो ईमान वाला भी जिस जगह से गुजरे वहां अच्छी यादें छोड़े, वहां उसके जाने के बाद खैर के काम हो, वहां शर खत्म हो जाए, लोग कहें कि आपके आने के बाद हमारी इस जगह पे तब्दीली आई, हमारे इस इलाके में चेंज आई। ये एक मोमिन का काम है, अल्लाह के रास्तों पे मुसख़्खर किए हुए पे चलती जाती है और अपना काम करती है। तो मोमिन कभी बुराई का इश्तिहार नहीं बन सकता, मोमिन की ज़ात से कभी बुराई नहीं फैल सकती, याद रखिएगा। जैसे बीमारियां और वबाएं फैलती हैं जरासीम से, साफ़ सुथरी चीज़ों से बीमारियां नहीं फैलती। तो आपका मेरा खुद को बुराइयों से रोकना, खुद रुकना, दूसरों को रोकना, हमारा अपना सेहतमंद किरदार हमारे मुआशरे को जरासीम से पाक करता है। देखिए ये बात फिर दोबारा होने लगी है जो अभी पीछे की है। हम जो एक गलत रस्म और एक गलत फंक्शन करते हैं ना मुआशरे में, हम एक गलत बीज डालते हैं, एक जरासीम छोड़ते हैं, दूसरा हमारा हमसाया या हमारा रिश्तेदार कल उससे बढ़ के बुराई करेगा तो लोग खुश होंगे, या उससे बढ़ के चाव करेगा तो लोग खुश होंगे उससे। और अगर आपने एक रोक ली है ना, तो आपने उतनी सी जगह को साफ़ कर दिया। सारा शहर गंदा हो, आप अपने इर्द गिर्द 10 मीटर जगह साफ़ कर लें तो आपके पास जरासीम नहीं आएंगे। आपके बच्चे जब ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं, ऐसी जगहों पर जाएंगे नहीं, माहौल खुद बहुत संवरता जाएगा, एक घर संवरेगा दूसरा संवरेगा। तो मोमिन इसी तरह बुराइयों का रास्ता रोकता है जैसे वबाओं का रास्ता रोका जाता है, और हर गुनाह जरासीम है वबा का, तकलीफ़ों का। फिर आप देखिए दूसरी चीज़, मुनाफिक क्या थे, यक भी दूना ही दिया हम, हाथ रोकते थे। मोमिन क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, मालों की, साइल और महरूम का हक है, हकूकुल्ला के साथ हकूकुल इबाद की अदायगी के लिए बेचैन होते हैं। मोमिन की शान क्या है कि वो अपने माल को अपना नहीं समझता, वो अल्लाह के रास्तों में लगा देता है, वो सोचों में नहीं पड़ जाता, वो काम करके दिखाता है, वो दूसरों पे नज़रें रखने से पहले खुद अपना हिस्सा डालता है। ये कितना बुनियादी फ़र्क है। इसमें ये नहीं कहा कि मोमिनों के पास माली नहीं होता, दोनों के पास होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मुनाफिक की अपनी नहीं पूरी पड़ती, वो कर्ज़ों के बोझ में जकड़ा होता है, वो अभी तक राइनिंगें दे रहा है, वो अभी तक अपनी किस्तें दे रहा है, अभी वो उसका सर ही नहीं सीधा हुआ कि कब उठ के कुछ करे, और अभी एक ज़रा बात सीधी होने लगती है कहता है एक और ना ले लें, चलो किराए पे दे देंगे, चलो बच्चे रह लेंगे, चलो वो। और वो कब्र में जब जाता है तो उसकी कमर झुकी होती है कर्ज़ों के बोझ से। जबकि मोमिन का हाल क्या है कि वो क्या करता है, इकामत सलात और इकामत ज़कात, हर तरह से अपने माल को पाक करता है, तदखीर करता है। फिर इसी तरह आप देखिए पीछे बात थी कि मुनाफिक अल्लाह को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते, अल्लाह को कभी भूल के नहीं याद किया, पूरी तरह भूल गए। मोमिन नमाज़ कायम करता है, अकीमुस्सला, नमाज़ों का एहतमाम करता है और ज़िक्र इलाही को अपनी ज़िंदगी समझता है, क्योंकि अकीमुस्सलात अली ज़िक्री, नमाज़ कायम करो मेरी याद के लिए, क्योंकि अल्लाह की याद का सबसे बड़ा ज़रिया है। फिर पीछे हमने चौथी सिफत मुनाफिक की क्या पढ़ी थी, फासिकून, इन्नल मुनाफिक ही नफ़कुमुल फासिकून, बदअहद गद्दार नाफरमान है। मोमिन कौन है, अहद के पक्के, वफा करने वाले, इतात गुजार, बात मानने वाले। इस पे तो रुक के सोचिए, आज मुसलमानों ने भी नमाज रोज़ा हज तक ही ईमान को रोक लिया, तो ये कब आएगा, इतात कब आएगी। ख़ास तौर पे आप देखिए इस आयत में इतात का जिक्र है, क्योंकि आमाल, खसाइल, गौर व फिक्र के मेआरात ये हैं जो इंसान को अल्लाह की नज़रों में मुनाफिकों से अलग करते हैं। तो नतीजा क्या है कि अंजाम भी फ़र्क है, इधर अंजाम क्या है, सैयर रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करेगा। ये जो सीन है ना, सा सोफ़ा के मानों में भी आती है ना, यहाँ अन करीब ज़हूर की बिशारत है, यानी देखना बहुत जल्दी अल्लाह ने अपने ईमान वालों पर रहम कर देना है। और बाद के हालात में ये बात साबित हुई कि दुनिया में मुसलमान इज्जत और सरफराजी और कामरानी के झंडों के तले खड़े हो गए। वाद अल्लाह, अल्लाह वादे पूरे नहीं करेगा तो और कौन करेगा, इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, तो अल्लाह के वादे जैसे दुनिया में सच्चे हैं वैसे वहाँ हैं। फिर आप देखिए कि ये जो बात हम पढ़ी ना अभी तक तो दुनिया की बातें हैं ना, अगर आप थोड़ा सा अंजाम भी दोनों का देखें, अदन हमेश की दुनिया में इंसान की ख्वाहिश करती वो हमेशा रहे, मैं अपने बाद कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाऊं जो बहुत फ़ायदा हो, تو اب تقابل کیجئے کہ جہاں دونوں شخصیات کا فرق ہے نا، تو ایک طرف لائن لگا کے منافق اور ایک طرف مومن کے انجام کو دیکھیے. منافقوں پر لعنتی لعنہم، ادھر کیا سیرحمہم، اللہ کی رحمت ہے. منافق لوگ کے لیے جہنم کا وعدہ تھا، ادھر کیا مومنوں سے وعدہ فتح و نصرت، زمین پہ اقتدار، انسانیت کے اصلاح کرنے والے نگران بنیں گے، جنتوں کا وعدہ، ادھر ادھر جہنموں کا وعدہ تھا. اللہ اپنے وعدوں کی روشنی میں آپ کو مجھے ان گھروں میں بلاتا ہے جو ہمیشگی کے ہیں. یہ جو لفظ عدن ہے نا، یہ بھی بندے کے لیے ایک بہت ہی اٹریکشن والی چیز ہے. اللہ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے ہمیشگی کا، ہمیشہ رہنے والی چیز. دیکھیے ذرا دنیا میں کتنے گھر بنے اور کتنے ٹوٹے، وہاں والے گھروں کا کیا ہوگا، فنا نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں. اور وہ خوبصورت گھر، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جہاں تسنیم کے چشمے ہوں گے، سلسبیل کے جھرنے ہوں گے، وہ جنتیں جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور ایک زمرد کی ہوگی. آج ہم کہاں ہیں، ہم اپنے آپ کو پوچھیں. دنیا کا ایک مٹی اور چونے کا گھر لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور اللہ کے بھی قانون کتنے بڑے ہیں. اور دنیا میں بھی گھر لینا کوئی آسان ہوگا؟ میرا تو خیال ہے بڑا ہی مشکل ہوگا. ایک لے کے دیکھیے آپ کن چکروں سے گزرتے ہیں. تو کیا جنت کے وہ گھر جو انبیاء، شہداء اور صدیقین کے لیے، اگر میرے آپ جیسے عام لوگوں کو لینے ہیں تو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ اور چلیں، یہ تو مادی چیزیں ہیں نا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں رضوان من اللہ، اللہ کی رضا. سچ بتائیں، آج اپنے آپ کو دنیا میں کھڑا کر کے گئے کہ میرے رب تو مجھ سے راضی ہے؟ دیکھیں، کوئی آپ سے راضی ہو یا کوئی ناراض ہو، فرق پڑتا؟ بالکل نہیں پڑتا فرق. کس کی راضی مندی یا ناراضگی سے؟ جس کی آپ کے دل میں کوئی قدر نہ ہو، جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، جس کو آپ کچھ ویلیو نہ دیں، جس کو آپ کچھ سمجھے نہ. لیکن کسی کو آپ سمجھے، چلیں ہمارے تو پھر قدم شوہروں پہ پہنچتے ہیں نا، قدم تو پکڑے ہوئے ہیں نا. شوہر راضی ہوں یا ناراض فرق پڑتا؟ ماں باپ راضی ہوں یا ناراض فرق پڑتا؟ بھائی بہنوں کی رضا مندی ہو کہ ناراضگیوں، فرق پڑتا؟ یہ ناراضگیوں کا ڈر ہی تو ہمیں اللہ کو ناراض کرنے پہ مجبور کرتا. بچوں کی بھی آج کل تو منہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. ہم سے قد اور عمر میں تیسرا حصہ، ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں. تو کیا پھر رضوان من اللہ کو چھوٹی چیز ہوگی؟ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے جنت کے جتنے بھی انعام دیے نا، آرام کی صورت میں راحت، فرحت، باغات، محلات، وہ چیزیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، دل میں خیال نہیں آیا، وہ چیزیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، جو زوال سے محروم، جو فنا سے محفوظ، یعنی جس کی ایک جھلک سے دنیا بھول جائے گی، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے اس فانی زندگی کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور جس کی قدر و قیمت اور رعنائی اتنی کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ جس جنت میں مل جائے، وہ خیر و من الدنیا و ما فیہا. اللہ تعالیٰ جس نے یہ سب کچھ بنایا، اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ، یہ وہ نعمت ہے کہ تمام جنتیں اس کی مثال لانے سے عاجز. اہل جنت کے لیے تو سب سے بڑی رضا کیا ہوگی کہ یہ سب ملا ہے تو انعام پہ ملا ہے، بھیک میں نہیں اللہ نے دے دیا، چلو جنت میں تمہیں شکل نہیں دکھاؤں گا، میرے پاس نہ آنا نہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کھانا رکھیں، کپڑے دیں، جو کریں گھر والے، لیکن آپ سے بات نہ کریں، آپ کو ٹائم نہ دیں، آپ کو توجہ نہ دیں، آپ خوش ہوں گے؟ آپ ان کے صوفوں پہ بیٹھنے جاتے ہیں، آپ ان کے کوئی کھانے کھانے جاتے ہیں، آپ کو تو ان سے عزت، پیار، محبت چاہیے. تو یاد رکھیے، جنت بھی اس لیے جنت ہے کہ وہ رب سے ملاقات کی جگہ ہے، اور رب کی رضا کے ساتھ وہاں ملاقات ہوگی، پھر ہی جنت کا مزہ آئے گا. اور اہل جنتوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، ان کی خوشی اور سرور کا، کہ جب ان کو اپنی دنیا کی ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے بدلے میں یہ آواز لگے کہ جاؤ، میں آج تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور کیا خوبصورت موت ہوگی اس بندے کی، جس کو موت کے وقت کہہ دیا جائے کہ را دیا تم مر دیا فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی. ایک سچے مومن کی نظر میں اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اس کو تو ہر وقت دل میں ایک پھانس کی طرح یہ بات اٹکی رہتی ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض. جب محبوب آپ کو مسکرا کر دیکھے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، تو آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، آپ کو ساری کائنات مسکراتی بھی دکھتی ہے. आप उसकी मोहब्बत के सहर में डूब कर हर चीज़ भूल जाते हैं, तो कहाँ फिर वो मालिके कायनात की रज़ा के रिदवान मिन अल्लाही अकबर ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये है कामयाबी। और जिस बंदे को दुनिया में ये सर्टिफिकेट मिल जाए, उसकी दुनिया भी जन्नत। क्यों सहाबे कराम को कहते हैं रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन? ये तो रज़ी अल्लाह का लकब है, ये अल्लाह ने दिया। सूरह फतह में पढ़ेंगे आप जाके। कितने खुशकिस्मत थे अबू बकर, उमर, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद, उस्मान। कभी आपको मुझे ये सर्टिफिकेट मिल जाए, पर डर क्या कि हम तो उसके बाद वो मस्ती करें कि ये वापस ना चला जाए। तो हमेशा अल्लाह से अपनी रज़ा मांगा करें कि अल्लाह तू राज़ी हो जा। जब रब राज़ी तो जग राज़ी। अब सबक के आखिर में अल्लाह के नबी को दो टोक फैसला दिया जा रहा है। देखिए दोनों किरदार सामने हैं, खरे खोटे का फ़र्क, मोमिन मुनाफिक का फ़र्क। अब क्या करो? अब वैसे ही रहो जैसे शुरू से थे। देखिए मदीना में आए हुए तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, ये हुक्म 10 साल के बाद आ रहा है। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो आइए ज़रा इन आयतों को पढ़ते हुए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी हिकमत दे, फहम और फरासत दे। क्या फरमाया? या युहन नबी युजाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुस अलैहिम। ए नबी, जिहाद कीजिए कुफार से। अब यहाँ देखिए वो है ना, तो यहाँ एक कॉमा लगाइए, फिर बात समझ आएगी। काफिरों से क्या करना है? जिहाद, ठीक है। और फिर वो के बाद है अल मुनाफिकीन, और कुफार से वग़्लुस अलैहिम, और उन पर सख्ती कीजिए। दो मानी बनते हैं इस एक आयत में। एक मानी क्या है? फिर देखिए आयत को, ए नबी जिहाद कीजिए कुफार और मुनाफिकीन से, और उन पर सख्ती कीजिए। फ़र्क समझ आए? पहला तर्जमा जो मैंने आपके सामने रखा, लग रहा था कि काफिरों से जिहाद कर लें और मुनाफिकों पे सख्ती करें। लोगों का दिल तो यही करता है। और वाकई अमली तौर पे देखें तो नबी सल्लम ने पूरी ज़िंदगी में मुनाफिकों से कोई जंग नहीं की। ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है इस्लाम का। कुफारे मक्का से जंगें हुई, यहूदे मदीना से हुई, फिर हिरकल, रोम, फारस, इधर उधर बातें गई, लेकिन ये जो मदीना में मौजूद 70-80 और इससे भी ज़्यादा 200-300 मुनाफिक थे, इनसे कोई जंग नहीं हुई। तो फिर इस आयत का क्या मतलब है? आपको तो मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम इस आयत को पढ़ते हैं और कोट जैसे करते हैं अल्लाह की बना। तो फ़र्क समझिएगा थोड़ा सा कि अल्लाह ताला अपने नबी को क्या कहता है। और यहाँ ये आपको बताऊँ कि बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ये आयत सूरह तहरीम में भी आएगी, 28वें पारे की आखिरी सूरत है। काबिले गौर नुक्ता ये कि इस आयत में जिहाद बमानी किताल नहीं है। शुरू से आपको बताया जाता है कि लफ्ज़ जिहाद सुन के परेशान ना हुआ करें। जिहाद तो जिद्दोजहद का नाम है, मेहनत का नाम है। तो मुनाफिकीन के साथ आपने कभी किताल नहीं किया। यहाँ जिहाद से मुराद किताल से निचले दर्जे की जिद्दोजहद है, जिसको अरबी में कहते हैं दूनल किताल, किताल के अलावा कुछ भी कर लें। मुराद क्या कि नबी इन मुनाफिकों के फितनों, इनके पेशा दीवानियों और इनका इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कोशिशों का तोड़ है ना, उसको तोड़ें, यानी इनका जोर तोड़ें, इनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जिद्दोजहद करें। बस रिवायत में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबुक से वापस आ रहे थे, तो इसीलिए आपने फरमाया, गो कहते हैं कि इस रिवायत की सनद स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन रिवायत मौजूद है कि रजाना मिनल जिहाद इल असगर इल जिहाद इल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए हैं। मुराद ये था कि उस ज़माने की सुपर पावर रोम, जो इतनी बड़ी थी, उसके ख़िलाफ़ जिहाद को आपने छोटा जिहाद करार दिया, और अब जिहाद अकबर सामने है। तो बाज़ कहते हैं कि ये मुनाफिकों के साथ जो हर वक्त की एक चली हुई थी सर जंग, उसकी तरफ इशारा है। बाज़ कहते हैं कि ये नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद है, लेकिन किसी एक बात को एक के साथ नहीं रख सकते। मुख्तलिफ मौके पर आपने मुख्तलिफ जवाब दिए। एक मौके पर आपसे पूछा गया, अय्युल जिहादी अफ़ज़ल, सबसे अफ़ज़ल जिहाद क्या है? तो आपने फ़रमाया, तुजाहिदा नफ्सक व हवाक फ़ी ज़ातिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कि तुम अब जिहाद करो अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अल्लाह की इताअत में। तो यहाँ क्या पता चला कि मुनाफिकों के साथ सख्ती कीजिए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, क्योंकि मुनाफिक जो थे ना, ये घर के भेदी थे, मारे आस्तीन थे, मुसलमानों के साथ रहते थे। अब देखते हैं, घर में ही दुश्मन रह रहा हो वो ज़्यादा ख़तरनाक है या बाहर वाला दुश्मन? बाहर से तो आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तो घर में तो कोई है वो सोते में आपका गला दबा दे। याद रखिए, ये मामला इतना आसान नहीं। साथ वालों के साथ जिहाद बहुत मुश्किल है दूर वालों के जिहाद की निस्बत। इन मुनाफिकों के औस और खजरज के लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इनके खिलाफ इकदाम करने से अंदरूनी तौर पर कई मसाइल जन्म ले सकते थे। मगर इस आयत के नज़ूल के बाद तबूक से वापस आकर आपने मुनाफिकीन के खिलाफ सख्त इकदाम किए, और उसमें सबसे बड़ा कदम आगे आने वाली आयत इंशाल्लाह, मस्जिद दरार को गिराया। नाम की एक मस्जिद बनी थी, गिराने और जलाने का था। बहुत बड़ी बात थी कि मुनाफिकीन मस्जिद के तकद्दस के नाम पे लोगों को मुश्तिल भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। फरमाए वमा वाहुम जहन्नम वबीसल मसीर, इनका ठिकाना जहन्नम और ये बहुत बुरी जगह है। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, जहाँ जिक्र आएगा मुनाफिकीन का, साथ ही कस्मों का जिक्र होगा। पिछले हिस्सों में भी ऐसे ही था ना, यहाँ देखिए 74, यहलिफून बिल्लाही मा कालू, वल्लाह की कसम खाकर कहते उन्होंने ये बात नहीं की। ये बातें कौन सी थी, इसकी डिटेल आप 28वें पारे में सूरत मुनाफिकून में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि तबूक से वापसी के सफ़र पर अब्दुल्ला बिन उबई के मुंह से कुछ बातें ऐसी सुन ली एक नौजवान शख्स ने, और उसने आकर अल्लाह के नबी से जिक्र किया। बाज़ कहते हैं गज़वे बनु मुस्तलक में ये वाक़िया हुआ था, बाज़ इधर भी लेके आते हैं। लेकिन ये वही बातें हैं जो आपको पीछे भी कोट की है ना सबक के शुरू में, कि रस्तों में बातें करते थे, कुलस्तहज़ीयू में सुनाई थी कि ये तो वापस नहीं आएंगे, और ये तो वो कमेंट्स रह जाते कि नेगेटिव कमेंट्स, हिम्मतें तोड़ने वाली बातें। फरमाए वलकत का लु कलीमत अलकुफरी, हालांकि उन्होंने कुफर का कलेमा कहा था, यानी बाद में वो मुकर गए, लेकिन अल्लाह ने कुरान में गवाही दे दी कि इन्होंने कहा था, और गवाही देने वाले को सच्चा करार दिया। और क्या किया, वह कफर उबाद इस्लामिहिम वहम बिमालम यनालू, और वो कुफर कर चुके अपने इस्लाम के बाद, और उन्होंने इरादा किया था इस चीज़ का जो वो कर ना सके। कुफर बाद ही इस्लाम क्या है भाई, मुसलमान तो थे ना, काफिर होना क्या है, नबी की नाफरमानी। और हम बिमालम ये नालू क्या आपको पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा। तबूक की वापसी पर लोगों ने नबी सल्लम की जान लेनी चाहिए। देखिए, दुश्मनों से अल्लाह बचा लाया, तो इन घर के भेदियों ने आपके लिए कुछ रोड़े अटकाए। हुआ क्या था कि एक पहाड़ी रास्ते पे से आपने गुजरना था, तंग घाटी थी जहाँ में से सिर्फ एक वक्त में एक ऊँट गुजर सकता था। आप सोचिए अल्लाह के नबी किन किन रस्तों से गुजरे इस दीन के लिए। खैर, आप काफ़िले से अलग थे, यानी थोड़े अलग हुए, आपने गुजरना था, फिर दूसरों ने गुजरना था। जब आप वहाँ से गुजरने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके साथ दो सहाबा थे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान और अम्मार बिन यासिर। इस तंग जगह पर कुछ मुनाफिकों ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए आप पर हमला किया। पहचाने जाने के डर से मुंह पे ढाटे बांधे हुए थे, और चाहते थे कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी को शहीद कर दें। लेकिन आपके जान निसार सहाबी, जो किसी हाल में आपको तनहा नहीं छोड़ते थे, उन्होंने इन हमलावरों को मार भगाया, और वो अपने इस इरादे में कामयाब ना हुए। फिर अल्लाह के नबी ने इनको, ये दो हैं वो खुशकिस्मत सहाबा जिनके नाम आते हैं, कि इन मुनाफिकों के नाम बता दिए। उन्होंने मुँह छुपाए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने खोल दिए, और साथ ही कहा कि किसी को इनके नाम ना बताना। हम होते घर आते ही व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल देते, फलाँ मुनाफिक फलाँ मुनाफिक, नहीं राज रखे। इसीलिए हुज़ैफ़ा बिन यमान को साहिबु सिर्र नबी कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान। फरमाए क्यों भाई, ये इस प्यारे नबी की जान क्यों लेते हैं, क्या किए इन्होंने? तो फरमाए वमा नक़मू इल्ला नग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, और ये लोग अपने इनाद यानी दुश्मनी का मुजाहरा नहीं कर रहे मगर इसीलिए कि अल्लाह और इसके रसूल ने उन्हें गनी कर दिया अपने फजल से। घर में जब दाने आ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह रसूल पे भी तनकीद होती है, फिर ज़ुबान खुलती है, फिर बंदा बड़ा बनता है। फ़ैं यतूबू यकु खैरल्लहुम, देखिए ये है रब, नबी की जान लेने वालों को भी वापसी का रास्ता दिखा रहा है, कि जो कर चुके हो आज अगर तौबा करते हो तो बेहतर है। ये है सूरह तौबा। हाँ, लेकिन वहीं यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद्दुनिया वल आखिरा, अगर वो पीठ फेर लें तो अल्लाह इन्हें बहुत दर्दनाक अज़ाब देगा, दुनिया में भी और आखरत में भी। और वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर, ना पूरी ज़मीन में इनका कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। तो क्या खुलासा निकला सारी बात का, कि जान लेने वाले दुश्मनों से भी अल्लाह ताला ने किस तरह के मामले किए। आपके मेरे लिए इसमें अमल की बात क्या है, कि जैसे ईमान नहीं छुपता ना, निफाक भी नहीं छुपता। हम कहते हैं हमारे ईमान की तो सब कोई खबर हो जाए, खबर ही छप जाए रेडियो पे, खबर ही छप जाए अखबार में या नशर हो जाए रेडियो पे, लेकिन निफाक का ना किसी को पता चले, तो याद रखिए ये नहीं छुपता। दूसरी बात यह कि इन आयतों के नाजिल होने से पहले पहले मुनाफिकीन मुसलमानों में घुले मिले रहते थे, आते काते बातें खटकती थी, लेकिन नफ्स सलम मुरव्वत वाले थे, करीमुन नफ्स थे, दरगुजर करते थे, तो उन्होंने इनसे कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखा। बाज़ दफ़ा ये आपकी मजलिसों में होते, गजवात में होते, मीटिंगों में भी होते, अल्लाह के नबी कुछ ना कहते। ये पहला मौका है जब आपको इनके साथ सख्ती का हुक्म दिया गया, तो आप इनको कहते हैं कि डिस्टेंस प्लीज़, एक फासले पर रखिए वाली बात हो गई। क्या पता चला कि जब लोग अपना निफाक खुद खोल दें तो फिर उनको ज़्यादा आजमाना नहीं चाहिए, ये उसकी भी एक आजमाइश होती है ना। और अपने लिए भी याद रखिए, जब आप दीन की खिदमत करते हैं ना, तो साथ ही साथ दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ये आपकी नेकी का ज़रिया बने, गुनाह का ज़रिया ना बने। और फिर आप देखिए कि इसमें ये जो बातें सारी हमने पढ़ी कि उन्होंने कोशिशें की लेकिन वो कर नहीं सके, तो क्या नबी सल्लम इतने कमज़ोर थे कि कोई आपकी जान भी लेने की कोशिश कर ले, कोई बैठ के आपके ऊपर बातें कर रहा है, कोई पीठ पीछे आपकी जुगलियाँ कर रहा है? तो याद रखिए कि हदीस में आता है, ईमान वाला भला भला होता है, लोग उसके बारे में कुछ भी करें उसका रब उसको बचाता है, लेकिन वो खुद कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं होता। और याद रखिए कि इन आयतों में एक वाक़िया आता है, बस वो सुन लीजिए, उस लेसन पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक खुतबा अल्लाह के नबी ने दिया, इसमें मुनाफिकीन की बदहाली और अंजाम का जिक्र किया। सुनने वालों में एक मुनाफिक था जिसका नाम जुल्लास आता है, जीम लाम अलिफ सीन है। इसने अपनी मजलिस में जाकर अहले मजलिस के सामने मज़ाही अंदाज में ये बात कही, ओ मोहम्मद, जो कुछ कह रहे हैं अगर वो सच है तो हम तो गधों से भी बदतर हैं। यानी उनको पता था कि हमारी बातें होती हैं, तो बाद में बैठ के अकेले में कह, सुना था आज, देखा फिर आपकी बात हुई हमारी, और हम तो फिर बेवकूफ़ हैं जो फिर आके बैठ जाते हैं, ये कैफियत। पास एक सहाबी थे आमिर बिन कैस, उन्होंने ये बात सुन ली, नाराज़ हुए, अल्लाह के नबी ने जो कहा है वो सच है और तुम गलत कहते हो। खैर, वापस पहुँचे तबूक से, अल्लाह के नबी के पास आमिर बिन कैस गए और सारा वाक़या सुना दिया। आपने जुल्लास को बुलाया तो साफ मुकर गया, बल्कि आमिर बिन कैस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझ पर तोहमत लगाई है, और कसम भी खा गया कि मैंने तो ये बातें नहीं की। आप अल्लाह के नबी के लिए एक बहुत कहना चाहिए क्रिटिकल इशू था। इंतज़ार किया, कहीं इंतज़ार करो, ये लोग अभी इस मजलिस में मौजूद थे कि ये आयतें जो हमने पढ़ी हैं ये नाजिल हो गई और अल्लाह ने झूठ खोल दिया और आमिर बिन कैस को बेगुनाह और जुल्लास को गुनाहगार साबित कर दिया। जो ही जुल्लास ने यह आयत सुनी तो खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं इकरार करता हूँ, मैं गलती पर था, क्योंकि अब कुरान ने मेरी तस्दीक कर दी है तो मैं कैसे करूँ। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और आमिर बिन कैस ने जो कहा था उसके सच होने का इकरार किया। अल्लाह के नबी ने उनकी तौबा को कबूल किया और तौफीक भी दी और उन्होंने हालात भी बेहतर किए, सुभान अल्लाह। इसी तरह और भी एक वाक़या आता है तबूक के सफ़र में कि अल्लाह के नबी की ऊँटनी गुम हो गई, मुसलमान इसको तलाश कर रहे थे तो मुनाफिकों ने अपने गिरोह में जाके पता क्या मजाक उड़ाया, लो जी आसमान की खबरें तो इनको खूब आती हैं, वो तो हमें सुनाते हैं और अपनी ऊँटनी का पता नहीं इस वक्त किधर है। तो ये कलिमतुल कुफ्र थी। अल्लाह ताला हमें ज़ुबान के किसी भी ऐसे बोल से बचाए जो ईमान से निकाल कर कुफर में ला दे। और याद रखिए, नेकी करने वाले कोई फरिश्ते नहीं होते, उनके अंदर भी कमी पेशी होती है, करें क्या, चलते जाएं। एक वक्त आएगा निफाक की जो निशानात हल्के होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अल्लाह ने चाहा तो ये सब कुछ ईमान में बदलेगा। ये एक ज़िंदगी भर का सफ़र होता है, चलते जाएंगे तो साफ रहेंगे, जहाँ रुक जाएंगे वहाँ तो फिर और तहें पड़ेंगी और इंसान फिर उसमें और ही महरूमियों का शिकार होता है, गिल्ट में चला जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير